ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद्भागवतम के दसम स्कंद अध्याय छठा, इनका शीर्षक है पुतनावध, श्लोक संख्या नंबर 41। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा इन श्लोकों को। कथा धूमस्य सौरभ्यम् अवग्राह्य व्रज उक्षया किम् इदम् कुत एव इति वदन्त व्रजम् आयुः। कथा धूमस्य सौरभ्यम् कथाधूमस्य सौरभ्यम् अवग्राह्य व्रजौक्षया अवग्राह्य व्रजक्षः किमिदं कुत एवेति किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजम् आययु व्रजन् वदन्तो व्रजम् आययु। कथाधूमस्य सौरभ्यम् अवग्राह्य व्रजाक्षया किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजम् आययु। कथाधूमस्य सौरभ्यम् अवग्राह्य व्रजाक्षः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजम् आययु।
Shasha Rabya
Shasha Rabya
माता जी से। शब्दार्थ इस प्रकार है, कठा धूमस्य, पुतना के शरीर के विभिन्न अंगों के जलने से उत्पन्न धुआए सौरभ्यम सुगंधित अवग्राय सुख कर व्रज ओक्षः दूर दूर के व्रजवासी किम इदम् यह सुगंधित कैसी है, कुतः कहाँ से आ रही है, एव निसंदेह इति इस तरह वदन्तः बातें करते व्रजम व्रज भूमि में आययु पहुँचे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। पुतना के जलते शरीर से निकलने धुआए की सुगंध को सूंघ कर दूर दूर से अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे यह सुगंधित कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान में गए जहाँ पुतना का शरीर जलाया जा रहा था। तात्पर्य शव के जलने से निकले धुएं की सुगंध रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधी से व्रज के निवासी चकित थे। होम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानंजन शलाकेय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्री उदपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहां पर आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जब पुतना नामक असुर जिनका उद्देश्य था कृष्ण को जान से खत्म कर देना, मगर यहां पर विपरीत हो गया और इसलिए इस अध्याय का नाम पड़ा पुतनावध। आए थे कृष्ण को मारने, मगर उनका ही वध हो गया। तो उनके मरने के पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि भगवान अपनी इच्छा शक्ति से पूतना को वृंदावन में कंस गार्डन है वहां पर जाकर उन्हें उस कंस के बाग में जाकर गिरा दिया, और जहां पर बड़े बड़े लकड़ियां हैं वो लकड़ी को काट कर उन्हें उनके शरीर को खंड खंड करते हुए उनके शरीर को जलाया गया। जब भी किसी का शव जो होता है उसे जलाना उचित होता है, क्योंकि अग्नि से जब कुछ शव को जला दिया जाता है तो उसके जो कर्म बंधन जो होते हैं वो कर्म बंधन उसी अग्नि के साथ जल जाता है। तो जलाना बहुत उचित मार्ग होता है जिससे उसके कई कर्म बंधन उसमें भस्म हो जाते हैं। मगर किसी किसी रिवाज में ऐसे देखा जाता है कि कुछ लोग उसे दफना देते हैं, वो उचित नहीं माना जाता। और कभी कभी किसी किसी में ऐसे भी देखा जाता है कि लोग पारसी में, जैसे कि लोग उनको जानवरों को खिलाने के लिए फेंक देते, तो कौवे वगैरह आकर उसके लाश को नोच नोच कर खाते हैं। और ये दृश्य को उनके संबंधी लोग सामने खड़े रहकर देखते हैं, ये देखना पड़ता है, उनका ऐसा एक रिवाज है। तो हालांकि ये रिवाज के पीछे उद्देश्य यही होता है कि कैसे भौतिक शरीर का अंततः गत्वा विनाश है, लेकिन ये भौतिक शरीर को ही चमकाना या भौतिक शरीर को ही देखभाल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसके साथ में हमारा एक और एक मुख्य उद्देश्य है, वो व्यक्ति को भूल जाता है। तो वैसे यहाँ पर पुतना के शरीर को यहाँ पर जलाया गया, तो शरीर जो कुछ ही घंटों में शरीर, मृत शरीर जो होता है बदबू मारने लगता है, और उसके शरीर को जलाने से तो दुर्गंध आती है। जिस व्यक्ति को बहुत प्रेम है वो व्यक्ति अगर गुजर भी गया तो वो व्यक्ति उसको, उसके पास जाने के लिए भी डरते हैं, मरे हुए शरीर के पास कोई पसंद नहीं करता है। उस व्यक्ति को सदैव आलिंगन करने के लिए कोई नहीं पसंद करता। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य बात यह हो रहा है कि पुतना के शरीर को जब जलाया गया तो उसमें सुगंध आने लग गया, अगुर सुगंध, जो कि इतना सुंदर सुगंध, ब्रजवासी लोग सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये सुगंध आ कहां से रहा। सभी लोग असमंजस में पड़ गए और आपस में वार्ता करने लग गए कि ये सुगंध आ कहां से रहा। श्री संप्रदाय के कुछ आचार्य ऐसे वर्णन करते हैं, इनके शरीर से सुगंध आने का मुख्य कारण क्या था, तो कुछ कारण को व्यक्त करते हैं। तो उनमें से पहला कारण व्यक्त करते हैं, पहली बात तो यह है कि भगवान का जो चरण कमल, जो कि समस्त तीर्थों का श्रोत्र है, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, भगवान का चरण कमल जो समस्त तीर्थों का श्रोत्र है, उनके चरण से ही सारे तीर्थ निकलते हैं, और वही चरण किनके ऊपर पड़ा, पुतना के शरीर पर, तो स्वाभाविक है कि उनके शरीर पे सुगंध आएगा। क्योंकि उनका जब भी कोई व्यक्ति, कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि कोई अगर गुजर जाता है तो उन्हें गंगा में बहा भी दिया जाता है, वो भी एक उचित मार्ग बताया जाता है उनको सदगति प्राप्त होकर के। तो ऐसे जो गंगा स्नान, गंगा तीर्थ में इस प्रकार बहा देने का मुख्य उद्देश्य कि उच्च गति प्राप्त हो, तो वो जो गंगा जो भगवान के चरण कमल से निकली है, वही भगवान का चरण कमल पुतना के शरीर के ऊपर रेंगा है, तो हो सकता है कि उनके शरीर से सुगंध आना स्वाभाविक है, कोई उसमें आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भगवान के पास कोई भी व्यक्ति कैसे भी आता है, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। किसी भी भावना से अगर आता है लेकिन भगवान के पास आता है तो भगवान उसको पवित्र कर देते हैं। जैसे कोई अगर भौतिक इच्छा भी लेकर आता है भगवान के पास तो भी भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं, ये दूसरा। और तीसरा ये कि उनके अंतिम संस्कार करने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अंतिम संस्कार करने वाले वहां पर ब्रजवासी लोग थे, क्योंकि जब भी अंतिम संस्कार करते तो ब्राह्मण पंडितों को बुलाया जाता है। तो ब्राह्मण पंडित जितने पटु होते हैं, जितना वो तपस्वी रहता है, उतना उस अंतिम संस्कार करने वाले वो जो व्यक्ति, वो जो बंदा जिन्होंने अपना देह छोड़ दिया, उसको सदगति प्राप्त होता है। वो किसके अनुसार? जो अंतिम संस्कार कर रहा है उनके अनुसार। तो यहाँ पर कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं था, ये तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ वैष्णव जो कि ब्रजवासी है, तो निश्चित है कि उनका शरीर शुद्ध हुआ है, इसमें कोई संशय ही नहीं। और फिर कारण बताते कि इतना ही नहीं, उनका जो मृत्यु जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? वृंदावन धाम में। अब रे वृंदावन धाम में अगर कोई मरेगा तो स्वाभाविक ही उन्हें सदगति प्राप्त होगा। और यह भी कारण वर्णन करते हैं कि जब यहां पर पूतना आई थी कृष्ण के पास, वो आई थी भगवान के साथ कुछ लेन देन करने, तो आई थी वो भगवान को कुछ विष अर्पण करने। तो भगवान भी भावग्राही है, या भगवान भी देखते हैं कि कोई अगर मुझे कुछ दिया है तो मुझे भी बदले में कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने जहर दिया, तो भगवान ने बदले में उनको शुद्धता के गुण को अर्पण कर दिया। यह है भगवान, जो कि भगवान कृष्ण के पास कोई किसी भी भाव से जाए, भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। इस कारण से पुतना का जो देह जो था वो चिन्मय हो गया, जो कि पुत ना, जो कि पुत यानी कि शुद्ध, ना यानी कि नहीं, जो अशुद्ध है, लेकिन उनको भी पुत कर दिया, उन्हें भी शुद्ध कर दिया। तो वैसे भगवान के पास कोई किसी भी तरह से अगर पहुंचता है तो भगवान उसे शुद्ध कर देते। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जगाई मधाई दोनों इतने पापी थे, और जिनके पाप को लिखकर चित्रगुप्त भी हैरान परेशान हो गया था, इतने पाप करते थे। तो वर्णन आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को जब आलिंगन कर दिया, तो उस आलिंगन से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो स्वर्ण कलर का जो रंग, जो मूर्तिमान जो उनका वपु था, वो स्वर्ण कलर से काले रंग का बन गया। अब पूरी तरह दामर जैसे हो गए थे उनका रंग। तब महाप्रभु ने अपने भक्तों को पूछा, मैं कैसे दिख रहा हूं? केवल उनके आंख दिख रहे थे और शायद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल या मुस्कान दिखता होगा। अब वो पूछ रहे थे कि मैं कैसे दिख रहा हूं, तो उनके भक्तगण कहने लगे, महाप्रभु एकदम श्याम सुंदर दिख रहे हैं। और वहां पर जब महाप्रभु ने कहा कि अब जोर से कीर्तन करो, ताकि मेरे अंदर जो पाप पंछी बैठे हुए सब उड़ जाए। और उड़कर कहां जाकर बैठे? उसके ऊपर जाकर बैठे जो कीर्तन नहीं कर रहा है। और महाप्रभु ने ऐसे संकीर्तन किया कि सारे के सारे जो पाप रूपी जो काले पंछी थे सब उड़ गए। तो यहां पर एक शिक्षा है साधक भक्तों को, कि वो यह है कि अगर कोई भगवान के भजन में लगा हुआ है तो हमें भी बड़े सावधानी से भजन करना चाहिए। नहीं तो अगर हम भजन नहीं करेंगे, अगल बगल वाला करेगा भजन, तो हो सकता है कि अगल बगल वाले का पाप पंछी आकर बैठ जाएगा। तो उसे जैसे कि एक पेड़ के नीचे बैठकर अगर ताली मारेंगे तो क्या होगा, वो सारे पेड़ के पंछी उड़कर दूसरे पेड़ पर जाके बैठेगा। वैसे ही हमें भी इस शरीर रूपी वृक्ष में जो पाप पंछी बैठा हुआ है उसे उड़ाने के लिए हमें संकीर्तन करना जरूरी है। तो जब ऐसे जब महाप्रभु ने इन लोगों का जब पाप जब धो दिए केवल संकीर्तन से, इतनी सरलता से, ये सुनकर देवलोक में हाहाकार कोलाहल मच गया कि ये हो क्या रहा, इतने अद्भुत दृश्य हो गया। और सभी लोग नाचने गाने लग गए, कार्तिकेय, महादेव, गणेश जी, पार्वती, हाँ पूरा उनका फैमिली, और साथ में सुखदेव गोस्वामी, इंद्र इत्यादि सभी लोग भाव भिहोर में लोटपोट होके नाच रहे। अब ये जब ध्वनि सुनाई पड़ी यमराज को, अब धर्मराज को जब ये ध्वनि सुनाई पड़ा, तो चैतन्य भागवत में जहां पर वर्णन आता है कि उस समय क्या हुआ, तो बताया गया कि चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासे प्रभु यम किब यही दूर पापा किब उपसमा। जब यमराज ने चित्रगुप्त को पूछा कि चित्रगुप्त ये हुआ क्या, तो चित्रगुप्त कहने लगे हे धर्मराज। चित्रगुप्त बोले प्रभु धर्मराज विफल परिश्रम आर किब काय। चित्रगुप्त कहने लगे कि जरा ध्यान से सुनो कि हमारा सारा श्रम विफल गया, किसी काम का नहीं। बोले क्या मतलब, तो कहने लगे लक्षित तक कही तो यदि एक मास पड़ी, अगर 100,000 स्टाफ लोग को बिठा दिया जाए 1 मास तक, तथापि पाइत शीघ्र न अंत पड़ी। वो कहने लगे तत्पर भी उनके पाप लिखना जो है वो कम नहीं होगा। वो ऐसे वर्णन किया गया है कि समुन्दर को शाही बना दो और समुन्दर के बालू के रेत को कलम बना दो, तत्पर भी जगाई मधाई का पाप लिखना खत्म नहीं होगा, इतने पाप थे। तो ये सुनकर यमराज बोले अच्छा तो आगे तो बताओ क्या हुआ। तो कहने लगे आगे आश्चर्य वाली बात यह है, तिल मात्र महाप्रभु सब कैल दूर, केवल उनको तिल बनाकर महाप्रभु ने उनको सब नष्ट कर दिया। अब इतना जब कहा, अब चित्रगुप्त आगे है रथ को खींचते जा रहे हैं और पीछे रथ के ऊपर बैठे हैं यमराज, तो पीछे धड़ाम करके आवाज आ रहा, तो पीछे मुड़कर देखे तो क्या हुआ, यमराज बेहोश होके गिर गए। यमराज भी बेहोश हो गए कि ये क्या हुआ, और वर्णन आता है कि पड़िल मूर्छित है रत ऊपर कोठा ना नासी का दूत सुकल शरीर, और वो पूरी तरह इतने भौकला कर वो गिर पड़े कि वो अचेत अवस्था में पड़ गए, बेहोश हो गए। तब उनके कानों में सुखदेव गोस्वामी इत्यादि सभी लोग हरि नाम उच्चारण किए, फिर से वो उठे और उठकर वो नाचने लग गए। तो ये महाप्रभु की विशेष अनुकंपा है कि महाप्रभु के पास जगाई मधाई ने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, कैसे केवल नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ गए। नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा, उनसे लहू निकाला, लेकिन बदले में महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। ये नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना से महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम उन्हें प्रदान किया। वास्तविकता ये भगवान इतने अनुकंपा इतने दयालु है। यहाँ पर पूतना आई थी भगवान को विष देने, मगर भगवान ने वो विष भी ग्रहण किया और साथ में उन्हें शुद्ध भी कर दिया। एक यहीं पर एक भक्त किस एक भागवतम क्लास में एक भक्त बता रहे थे, कुछ कारण वर्णन कर रहे थे भगवान के आंखें बंद होने का, तो उसमें एक उन्होंने बहुत सुंदर एक कारण बताया। तो एक कारण उन्होंने ये बताया कि भगवान ने पुतना को देखते ही आंखें बंद कर दी। आंखें बंद इसलिए कि क्योंकि भगवान ने सोचा अच्छा ये विष ला रही है, जहर ला रही है, कोई बात नहीं, मैं तो इसे सोते सोते पी लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो हलाहल विष जिसको केवल जीभ में रखते ही व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है, वैसा हलाहल विष को यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बड़े आसानी से पी लिया। किसी आचार्य ने यह भी कहा है कि भगवान ने पुतना को देखकर आंखें बंद इसलिए किए क्योंकि वो आंखें बंद करके महादेव का स्मरण कर रहे थे। और महादेव का स्मरण क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखो मेरा यहाँ पर प्राकट्य मैं इसलिए हुआ, यहाँ पर मेरा आविर्भाव इसलिए हुआ है क्योंकि मैं माखन और मिश्री खाऊं, मगर ये जहर पीना मेरा काम नहीं है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये महादेव आप इसे पी लो। और उन्होंने महादेव का स्मरण कर रहे थे। तो वैसे भगवान इन्हें इतने अनुकंपा जिन्होंने जहर भी पी लिया मगर उन्हें शुद्ध कर दिया। तो यहाँ पर एक शिक्षा एक साधक भक्त के लिए क्या है, साधक भक्त के लिए यह शिक्षा है कि जब व्यक्ति जब साधना भक्ति में जब लगते हैं तो उसके जीवन में कैसे रुकावट उत्पन्न होता है, जिस रुकावट को लांग कर उसे आगे जाना चाहिए ताकि वो भी आगे जाकर शुद्धता को प्राप्त करे या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे। तो एक साधक भक्त के लिए सबसे बड़ा रुकावट है विषय भोग। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीव का स्वभाव है इंद्रिय भोग, लेकिन वो इंद्रिय भोग वो अगर भगवान की सेवा में करते हुए वो सबसे बड़ा जो इंद्रिय भोग को प्राप्त नहीं करेगा तो वो भौतिक संसार में खोज करेगा, कहीं ना कहीं तो उसको रस चाहिए। और अगर वो आध्यात्मिक में रस नहीं लेगा तो भौतिक में लेगा। तो ये जो भौतिक रस जो इंद्रिय भोग जो है ये वास्तविक बहुत बड़ा अवरोध है, यहां तक कि देवलोक को भी हिला देता है। देवलोक भी इस इंद्रिय विषय वस्तु से परेशान है, इसलिए देवलोक में भी देवतागण ये प्रार्थना करते हैं कि हमें अब की बार जन्म मिलेगा तो भारत भूमि में ही मिलना चाहिए, क्योंकि देवलोक में भी स्वर्ग में भी उन लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे विषय वस्तु है। वो विषय वस्तु के चंचल मन से व्यक्ति एक है कुरु नंदना नहीं होता, और इसलिए बहु शाखा है अनंतश्च, और इसलिए उनकी बुद्धि चारों शाखाओं में विभाजित है। जैसे देवलोक में जैसे कि एक बहुत एक सुंदर एक उदाहरण है, एक ऋषि था, एक तपस्वी व्यक्ति था, उग्र तपस्वी करके एक व्यक्ति था। यह उग्र तपस्वी जब अपनी पत्नी के पत्नी उनकी पत्नी उनको बास्केट में बिठाकर लेकर जा रही थी, और ये जो उनकी जो पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, और ये उग्र तपस्वी जो था ये बड़ा विषय भोगी था, तो उनको जहां जहां भोग करना रहता था तो ये उसको लेकर जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान, इनकी पत्नी अपने पति के संतुष्टि के लिए। तो एक ऋषि ने देख लिया, अब वो ऋषि ने देखा और उन्होंने ये सोचा कि ये इतना शरीर तो एकदम खत्म हो चुका है, इतना वृद्ध हो गया है, बैठने के लायक भी नहीं है, फिर भी विषय भोग करना है। और ये दृश्य देखकर उन्होंने ये श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अब उन्होंने श्राप दे दिया। अब वो जब श्राप दिया तो हुआ यूं कि इनकी पतिव्रता स्त्री पतिव्रता की शक्ति से समझ गई कि हाँ उन्हें श्राप मिला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा ठीक है सूर्य उदय तक इनको श्राप है, मैं ये दावा करती हूं कि कल सूरज उगेगा ही नहीं। और सूरज का एकाएक चक्का रुक गया, सूरज के रथ का चक्का रुक गया और वो हैरान हो गए सूर्य देव की ये क्या हुआ। तो उनके जो सारथी जो थे ड्राइवर, तो वो कहने लगे, वरुण देव कहने लगे कि क्या हुआ, क्यों हमारा रथ आगे नहीं बढ़ रहा। तो सूर्य देव ने कहा क्या करूं, किसी कारणवश किसी का श्राप मिल चुका है इसलिए आगे नहीं चले। तो इन्होंने पूछा कब तक ऐसे रुका रहे, बोला पता नहीं कुछ तो देरी तो हो ही जाएगा। तो वरुण देव ने मौका देखा, बोला ठीक है मैं एक चक्कर लगा के आता हूं स्वर्ग में। तो वरुण देव को थोड़ा सा मौका मिला स्वर्ग के लिए, निकल पड़ा और स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में उन्होंने देखा स्वर्ग में एंट्री नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अब स्वर्ग में इंद्र ही एकमात्र अप्सराओं के बीच में नृत्य करेगा और कोई पुरुष नहीं था, तो बाकी सब कन्या होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने वरुण देव ने भी वरुणी का रूप धारण कर दिया। तो वो भी देखना चाहते थे कि स्वर्ग में हो क्या है। तो वरुणी का रूप धारण करके वो जब अंदर प्रवेश किए तो इंद्र जो थे वो वरुणी को देखकर आकर्षित हो गए। अब वरुणी को देखकर आकर्षित हो गए तो वरुणी वहां पर हताश परेशान होकर जब वापस आए तो उन्होंने सूर्यदेव ने पूछा क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। बोले क्या करूं मैं वरुणी रूप धारण किया, इंद्र आकर्षित हो गए। तो बोले ठीक है मुझे वरुणी का रूप दिखाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं दिखाओ। और उन्होंने जिद किया तो उन्होंने वरुणी का रूप दिखाया तो सूर्यदेव भी आकर्षित हो गया। तो इंद्र के संगति से उत्पन्न हुआ वाली और सूर्य के संगति से उत्पन्न हुआ सुग्रीव, और वाली और सुग्रीव का जन्म इस प्रकार हुआ, जो कि ऋक्षराज जो कि एक वानर थे जिनके द्वारा उनका जन्म हुआ। तो यहां पर ये बताया जाता है कि किस प्रकार जो कि देवलोक में भी ये जो विषय भोग का जो चमक धमक जो है इसको देखकर वे बड़े से बड़े देवगण भी विचलित हो जाते हैं। तो एक साधक भक्त का तो स्वाभाविक हो सकता है, जैसे कि बताया जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन लेकर जब जा रहे थे तो उस समय उन्होंने काल कृष्ण दास को अपने साथ रखे थे, तो सबको हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में डुबा रहे थे, सबको कृष्ण का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो थे उनके जो असिस्टेंट काल कृष्ण दास वो कुछ भटारविंद को देख के वो आकर्षित हो गए और वो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को छोड़कर वो भटारविंद के पीछे चले गए। अब महाप्रभु ने ये देखा तो महाप्रभु गए सीधे उनके चोटी पकड़कर उन्हें घसीट के ला रहे थे, तो वहां पर भटारविंद लोग ने भी अपना मंत्र तंत्र फेंके महाप्रभु पर, अस्त्र शस्त्र उन पर मारे, लेकिन महाप्रभु जो स्वयं भगवान है सारे जादूगर के जादूगर है तो उनके ऊपर कौन सा जादू चलेगा, जो भी कुछ उन लोग मारते तो रिवर्स चला जाता था, और वैसे जो लोग जितने लोग ने जो हथियार मारा उनको ही जाके लग गया, और इस प्रकार महाप्रभु ने उनको चोटी पकड़ के खींच के लाया। तो ये भी एक चोटी की महिमा है। तो चोटी की महिमा ये भी है कि अगर कोई भक्ति में थोड़ा बहुत अगर उसका ट्रैक अगर बदलता होगा भक्ति मार्ग से तो उसके चोटी को खींच के वापस लेकर आएंगे, इसलिए वैष्णव आभूषण भी जरूरी है। तो वैसे यहां पर जब महाप्रभु ने जब उनको लेकर आए तो महाप्रभु कहने लगे एवे आमी ये आनी करी लो उदय यह तुम्हा नाही और उदय, और उन्होंने कहा लो मैंने इनको वापस लाया है स्वरूप दामोदर, अब मैं इसका जवाबदारी नहीं लेता, अब तुम इसका जवाबदारी लो, और उनको सौंप दिया। तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके संकीर्तन आंदोलन में उनके भक्त का ऐसी दृष्टि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो एक साधक भक्त जब साधना में लगा हुआ है तो वो उनके जीवन में भी ऐसे चुनौती आती है, तो उन्हें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो वैसे चुनौती से अग्रसर या उस चुनौती को लांघने के लिए एक साधक भक्त को क्या करना चाहिए, इसके विषय में आगे वर्णन आता है कि प्रथम बताया गया है कि उसे एकमात्र कृष्ण जो वो सेवा में लगा हुआ है जो कृष्ण के कार्य में जो लगा हुआ उसे वहीं पर ही टिके रहना है, पहला काम उसे ये करना चाहिए। तो जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल को सारे गायों को जब चुरा लिया था उस समय की बात थी कि सभी लोग परेशान हो गए हताश हो गए कि गैया ग्वाल बाल बछड़े कहाँ चले गए, गैया गई कहाँ, तो सब हैरान परेशान थे। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते तान दृष्ट्वा भय संतृष्टान उच्चे कृष्णो से अभी भयम, तान दृष्ट्वा जब ये दृष्टि उन्होंने देखा क्या देखा कि हमारा बछड़ा खो गया है या किसी बाघ ने या कोई भयंकर जानवर ने बछड़े को खा लिया क्या, ऐसे मन में विचार आने लग गया, तो क्या हुआ भय उत्पन्न होने लगा। अगर जैसे कि कह दिया जाए तुम्हारे माखन मिश्री का डब्बा किसी ने उठा लिया तो ठीक है, और ये कह दे तुम्हारा गाड़ी किसी ने उठा लिया तो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते व्यक्ति, थोड़ा गंभीर ज्यादा हो जाता है कि गाड़ी हाँ गाड़ी तो ज्यादा महत्व। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो यातायात जो यहाँ पर जो उनका जो संपत्ति जो टिका हुआ है बछड़ों में वो चोरी हो गया, तो यहाँ पर सभी लोग संतृष्टान सभी लोग चिंतित हो गए, तो कृष्ण ने क्या कहा, उच्चे कृष्ण से भी भयम, जो समस्त भय को डराता है वो स्वयं कृष्ण ने कहा, मित्रानी आसान मा वीर मनते। वो कहने लगे, मित्रानी हे मित्रगण आसान, तुम जिस स्थान पर बैठो वहीं बैठे रहो, तुम जाओ मत, तुम भोजन कर रहे हो वहीं पर ही रहकर भोजन करो, मैं जाकर देखकर आता हूं। और उन्होंने कृष्ण ने उनको बिठाए और निकल पड़े उन लोगों को खोजने के लिए। तो यहां पर राधा गोविंद महाराज एक शिक्षा देते हैं। इससे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि गौवे जो कि ग्वाल जो कि गाय को भी गो करके संस्कृत में उच्चारण किया गया है। तो अब कृष्ण कौन है, गोविंद है। गोविंद यानी कि जो इंद्रियों को भी आनंद देता है और साथ में गौओं को भी आनंद देता है, दोनों अर्थ है। तो यहां पर जो बछड़ों को आनंद देने वाला जो गोविंद, वो साथ में इंद्रियों को भी आनंद देता है और इंद्रियों की भी रक्षा करता है। तो जब बछड़े जब खोजने के लिए जब कृष्ण निकल गए यानी कि गो की तलाश में चले गए, ठीक उसी तरह जब साधक भक्त जब साधना भक्ति करते तो उनकी इंद्रियां जब माया के द्वारा जब हर लिया जाता है, तो माया के द्वारा चुरा लेने से वो उसे क्या करना है, केवल एक ही काम करना है और वो क्या, भगवान की सेवा। जो वो भगवान के कार्य में लगा हुआ है उसे वही कार्य में टिके रहना चाहिए। तो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर करते रहेंगे तो ये जो इंद्रियों को वापस लाने का जो हेडेक है वो किनका है, कृष्ण का है। तो कृष्ण ने ग्वाल बाल को कहा, तुम लोग हेडेक मत लो या तुम लोग टेंशन मत लो, वो जो बछड़ों या गौओं को लाने का जवाबदारी मेरा है, केवल जवाबदारी हमारा क्या है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। और केवल उस महामंत्र को केवल व्यक्ति जप करता रहेगा, स्वाभाविक कृष्ण ने क्या कहा, हीनस्य वक्तान अहम, मैं इसी स्थान में उस बछड़े को वापस लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो वैसे अगर कोई विषय भोग के चुनौती से अगर वो डगमगाता है तो उसे केवल यही काम करना है एक साधक भक्त को, और वो क्या है, केवल भगवान की सेवा में लगे रहना है। ये प्रथम उपदेश है। जैसे वासुदेव विप्र जब उस समय उनके शरीर में अनेक अनेक प्रकार के जब कुष्ठ रोग हो चुके थे, तब उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, आलिंगन कर उनको शुद्ध कर दिया, और केवल शुद्ध नहीं सुंदर भी बना दिया। तब वासुदेव विप्र कहने लगे कि आपने मुझे शुद्ध कर दिया, इतना सुंदर कर दिया, अब हो सकता है कि मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, तो मैं क्या करूं। महाप्रभु ने कहा, चिंता मत करो, प्रभु कहे कबू तुम्हार ना है वह अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। केवल यही करिए, केवल कृष्ण का नाम जप करिए, बाकी मेरा काम है, बाकी जो कार्य है वो कृष्ण का है। केवल भक्तों का या साधक भक्तों का एकमात्र कार्य है कि वो निरंतर कृष्ण का नाम जप करे, कृष्ण की सेवा में मगन रहे। जैसे दामोदर मास चल रहा है इसलिए यशोदा मैया भी कृष्ण की सेवा में पूरी तरह चूर हो चुकी थी। जब मक्खन बन रही थी उसी समय, तब उस समय भगवान कृष्ण उस ध्वनि को सुनकर उसी स्थान पर आए जहां पर यशोदा मैया मक्खन बन रही है। तब उस समय उन्होंने रोते हुए छींक भी, उन्होंने ध्वनि भी दिया, मगर यशोदा मैया को सुनाई नहीं पड़ा। यशोदा मैया पूरी तरह निमग्न हो चुकी थी सेवा में। और तब इतने में कृष्ण ने उस मंथनी को पकड़ा, तब एकाएक उनके ध्यान हट गया, तब वो कृष्ण की तरफ देखने लगी। कृष्ण साक्षात उपस्थित रहने के बाद भी उनका ध्यान पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लग चुका था। जैसे रामायण का शुरुआत किस प्रकार हुआ, लव और कुश के गीत के द्वारा। तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने सारी सभाओं को बिठाकर जब लवकुश जब रामायण चरित्र जब सुना रहे थे तो इतने निमग्न हो गए थे सभी के सब कि रामचंद्र जी सोचने लगे शायद मैं आसन के ऊपर बैठा हूं इसलिए राजा के आसन के ऊपर बैठा हूं इसलिए आनंद नहीं आ रहा है, मुझे उतरना जरूरी है। तो रामचंद्र जी उतर के सीढ़ियों पे बैठ गए, तब भी उन्होंने देखा बाकी लोग को और आनंद आ रहा है तो उन्होंने सोचा शायद और नीचे उतरना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र जी नीचे उतर के प्रजाओं के बगल में बैठ गए और बगल में बैठ गए प्रजाओं को ध्यान नहीं, पूरी तरह वो कथाओं में पूरी तरह निमग्न हो चुके थे और इतने निमग्न हो गए थे जब कुछ हास्यकार की जब बात आती थी तो आपस में लोग एक दूसरे को पीटते थे तो कभी कभी रामचंद्र जी को भी पीट देते थे, वाह क्या बात बोला, और सब लोग आश्चर्य हो जाते थे क्या हुआ। तो वैसे प्रभु रामचंद्र जी भी चकित थे कि इन लोग इतने निमग्न हैं। तो जब कोई भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाता है तो कोई नकारात्मक स्थिति भी आता है तो उसको सकारात्मक स्थिति में बदल देता है। जैसे श्री संप्रदाय में एक भक्त हुए कुरेश्वर भट्ट, वो कुरेश्वर भट्ट के शिष्य पराशर भट्ट, पराशर भट्ट को कुरेश्वर ने यह शिक्षा दिया था कि तुम निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम की टीका लिखना, तो निरंतर वो विष्णु सहस्त्र नाम पर टीका लिखा करता था। हुआ यूं कि उनके पास एक बंदा आता था और रोज उन्हें गालियां देता था और खूब गालियां, तुम लोफर, किसी काम के नहीं, बेकार हो और इस प्रकार मूर्ख नंबर, तरह तरह की उनको गाली, और यह रोज गालियां भी सुनता था और फिर कहते थे चलो प्रसाद का टाइम हो गया और उसको लंच के लिए लेके जाता था। ये कुरेश्वर भट्ट रोज उनको लंच खिलाता था और यह व्यक्ति रोज कुरेश्वर भट्ट को गालियां देता था। तो बाकी लोग को ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा कि ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही कि आप ऐसे क्यों कर रहे, वो आपको इतना गालियां दे रहा और आप उसको रोज भोजन खिला रहे। तो इन्होंने कहा देखिए मैं ये वास्तविक मेरा शत्रु नहीं मित्र है। बोले कैसे? मेरे गुरुजी ने मुझे दो आदेश दिया, एक आदेश यह दिया कि निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम पर टीका लिखना और दूसरा आदेश यह दिया कि अपनी गलतियों को खोजकर बाहर निकालना, ये दो मुझे आदेश दिया। तो पहला कर्तव्य तो मैं कर रहा हूं और पहले आदेश को इतना पालन कर रहा हूं कि दूसरे आदेश को पालन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मगर यह बंदा मुझे मदद कर रहा है तो ये मेरा शत्रु हुआ क्या मित्र हुआ? मित्र हुआ ना। तो वैसे वो जो व्यक्ति जो उन्हें रोज गालियां भी देता था तो उनको वो सकारात्मक दृष्टि से ग्रहण कर लिया। तो वह इस प्रकार जब केवल कृष्ण की सेवा में कोई डूबा होगा, बाकी इंद्रिय जो भटक रहा है वो इंद्रियों को पकड़ के लाना, जिस प्रकार बछड़े भटक रहे थे बछड़ों को पकड़ के लाने का जो उत्तरदायित्व कृष्ण ने स्वयं लिया, वैसे ही इंद्रियों जो भटक रहे उसको पकड़ के लाने का उत्तरदायित्व कृष्ण स्वयं लेते हैं। केवल कार्य यह करना है कि जिस प्रकार ग्वालपाल को बैठकर अपने आसन पर बैठकर भोजन करने को कहा कृष्ण ने, वैसे ही हम साधक भक्त को उसी आसन में बैठकर हरे कृष्ण जप करना है। तो केवल वो करते रहेंगे तो व्यक्ति आसानी से जो माया के द्वारा जो चुनौती उसको झेल सकते हैं। और ऐसे करने से क्या होगा, क्योंकि पुतना ने जब कृष्ण को जब अपना स्तनपान करा रही थी तो कृष्ण ने उनको सेवा से छोड़ा ही नहीं। अब पुतना ने उनको आधे सेवा से छोड़कर चली नहीं गई, पूरी सेवा की। तो जब ऑफरिंग कर रही है तो कृष्ण ने ऑफरिंग जब लेना शुरू किया तो छोड़े नहीं उसे, तो इसीलिए पुतना शुद्ध हो गई क्योंकि वो आधे में नहीं चली गई। तो जब व्यक्ति पूरी तरह निमग्न रहेगा तब उसका आगे एक स्टेज आएगा और वो क्या है, इच्छा। उसके हृदय में इच्छा जागेगी भगवान की सेवा करने के लिए। जो जैसे रुक्मणी का जब भगवान कृष्ण ने हरण किया था तब उस समय रुक्मणी को रोकने के लिए, कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए कई उनके शत्रुगण चारों दिशाओं से फैल गए थे। और यहां पर बलराम जी को भी कृष्ण ने कह दिया था सेना को लेकर आना, तो शिशुपाल इत्यादि सभी लोग उनके समक्ष खड़े थे। तब उस समय रुक्मणी बड़ी चिंतित हो गई। उस चिंतित अवस्था को देखकर रुक्मणी को कृष्ण ने एक सुंदर मुस्कान दिया। मुस्कान देखकर उन्होंने क्या बताया, प्रहस्य भगवान हय मत्सम भैर वाम लोचना। तो बहुत सुंदर नयन वाले ने जब उनको मुस्कान दिया तो आचार्यगण कहते हैं वो मुस्कान देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, तावक शास्त्रम बलम, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सेनागण इन लोगों का विनाश कर देंगे। किन लोगों का, शत्रुओं का। किनके सेनागण, तुम्हारे यानी कि रुक्मणी के। अब रुक्मणी के सेना कौन थे, कोई नहीं। लेकिन कृष्ण ने ये विचार किया क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे साथ में है, तो मेरी सारी संपत्ति इनकी है। तो कृष्ण ने अपनी सारी संपत्ति रुक्मणी को अर्पण कर दिया और कहने लगे मेरी नहीं तुम्हारी है, और तुम्हारी संपत्ति इन लोगों को नष्ट करेगी। तो भगवान इतने दयालु है कि भगवान के पास कोई अगर थोड़े समय के लिए भी संबंध शुरू करता है तो भगवान उनके साथ आदान प्रदान करने को तैयार हो जाते हैं। अब रुक्मणी के साथ कृष्ण का थोड़े समय पहले ही संबंध शुरू हुआ था। अब जब शुरुआत में किसी का अगर संबंध शुरू होता है तो कोई इतना जल्दी पूरी तरह विश्वास नहीं करते, समय लगता है उसके साथ, दिन ब दिन जाता है, तब जाकर उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। अब कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखना तो व्यक्ति का कभी कभी पूरा जीवन दाव पे लग जाता है। तो वैसे यहां पर कुछ ही क्षण में भगवान ने सब कुछ अर्पण, इसलिए जय रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब विभीषण आए थे प्रभु रामचंद्र जी को समर्पण करने, तो प्रभु रामचंद्र जी ने ये कहा कि सकृत एवं प्रपन्नो यस्तव स्मृति इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् प्रथमम्। ये मेरा व्रत है कि कोई अगर एक बार भी मेरे चरण कमल पर अगर समर्पण करता है तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको निरंतर अभय प्रदान करता हूं, हर जन्म जन्मांतर उन्हें अभय दान प्रदान करता हूं। ये भगवान का विशेष अनुकंपा है। वैसे प्रभु रामचंद्र जी अपने इस स्थिति से ये भक्तों के हृदय में इच्छा जगा रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो। जिस इच्छा से व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़कर नहीं जाएगा तब वो व्यक्ति आगे जाकर पुतना जैसे शुद्ध हुई तो उसका भी वो स्तर आएगा। तो पुतना भी इसी प्रकार शुद्ध हो गई। जब पुतना ने जब कृष्ण को जब पकड़ लिया था तब पुतना कहने लगी सम मुंचति मुंचालम इति प्रभाषणी करके रोते हुए भागने लगी कि मुझे छोड़ दो। कृष्ण ने नहीं छोड़ा। तो कृष्ण के पास कोई अगर आता है तो अगर कहीं से भी अगर अगल बगल से अगर गुजर के कृष्ण के पास आया तो वो समझो कि पूरी तरह वो फंस गया, वो कहीं नहीं जाने वाला है। एक बार किसी के गले में ये जप माला का झोली आ गया तो समझो कि उसका जीवन यही कटरे हो। और पूतना सोच रही थी मैं छोड़ के चले जाऊं। बैक टू गॉडन मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, एक व्यक्ति एक ब्रह्मचारी जो 5 साल ब्रह्मचारी किया और फिर कहा कि ये बस हो गया, पक गया मैं ये सब चीज से, रोज सुबह सुबह उठना वही जप करना वही क्या है, कुछ चेंज चाहिए। और ऐसे सोचकर उन्होंने अपने दिनचर्या को बदलने के लिए वो ब्रह्मचारी सब छोड़कर वो पैंट शर्ट डाल के गेट के बाहर गया। अब जब वो वापस जब पुराना कपड़ा जो उसका था वही डाल के बाहर गया। अब जब बाहर गया तो बोला बहुत दिन हो गया पिक्चर नहीं देखा, एक पिक्चर में देखना चाहता हूँ। अब उन्होंने ऐसी इच्छा की और वो गए सीधे थिएटर में। अब थिएटर में लाइन में खड़ा था टिकट लेने के लिए, बड़ा लंबा लाइन, और उतने में वहां पर हरे कृष्णा वाले बुक डिस्ट्रीब्यूट करे, लीजिए इस ग्रंथ को लीजिए और अपना जीवन धन्य कर दीजिए। अब उन्होंने सोचा अरे हरे कृष्णा वाला यहां भी नहीं छोड़ता और फिर वो टिकट कैसे, तो मुंह छुपा कर वो टिकट लेकर अंदर घुस गया और अंदर घुसकर वो बैठ गया टिकट लेकर और पिक्चर देख रहा है। पिक्चर तो रंग बिरंगीन चित्र देखा और इतने में बीच में आर्टिकल आता है, जैसे एड आता है, तो एड आने लगा तो सोचा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उन लोग घूमते होंगे, तो यहीं बैठा रहा। और फिर वहां पर उन्होंने एक एड में एक आर्टिकल देखा कि कुछ हरे कृष्णा भक्त लोग कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कर रहे हैं। अब ये दृश्य देखकर वो बोले अरे ये लोग तो थिएटर में भी है, तो बोला शायद ये जो जगह है वही शायद बहुत दूषित है, मुझे लगता है ये जगह ही छोड़ के जाना चाहिए। और ऐसे सोचकर उन्होंने वो स्थान छोड़कर वहां से फ्लाइट पकड़कर निकल पड़ा। जब फ्लाइट में बैठा तो उसके बगल में और एक व्यक्ति बैठे थे और यहाँ पर एरोस्टर ने कहा अपने अपने बेल्ट लगा दो, तो बेल्ट लगा दिया। बेल्ट लगाने के बाद उसके पश्चात उन्होंने क्या देखा, बगल में एक व्यक्ति था, उन्होंने भगवत गीता हैज इट इज निकाला और वो पढ़ रहा, बोला बगल में ही। और फिर वो एयरपोर्ट में उतरा, एयरपोर्ट में उतर कर वो सोचा भी भागू या, लेकिन एयरपोर्ट पे भी हरे कृष्णा वाला लीजिए भगवत गीता आपका जीवन धन्य कर दीजिए। अब वो सोचा कि भगवान कृष्ण मुझे छोड़ेंगे नहीं, लगता है कहीं जुड़ जाओ, और वो वापस आके जुड़ गया। तो कोई अगर कृष्ण को छोड़कर भागेगा तो भी कहां तक भागेगा, कृष्ण का हाथ काफी लंबा है, काफी बड़ा है, और एक बार पकड़ में आ जाएगा तो समझो कि हमेशा के लिए फंस गया। तो वैसे ही यहां पर पूतना चिल्ला रही थी मुझे छोड़ दो, लेकिन कृष्ण जानते थे कि मुझे क्या करना है, और कृष्ण ने ऐसे कसके पकड़े कि वो जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई तब तक उन्हें नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार पुतना को शुद्ध कर कर उन्होंने पुतना को मां का स्थान दिया। श्री संप्रदाय के एक आचार्य बताते हैं कि जब जरा नाम के शिकारी ने जब कृष्ण को जब तीर मारा, तो वो तीर मारने के द्वारा तब उस समय कृष्ण ने मां करके पुकारा, तो मां करके पुकारा तो तीन माता आ गई, एक थी यशोदा माता, दूसरा थी देवकी माता और तीसरा थी पुतना माता। तो पुतना को यह स्थान दिया भगवान ने कि उनको मातृ का स्थान दिया, केवल उन्होंने जहर दिया, कृष्ण ने उनको मां के रूप में उसे उच्चारण किया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, समय तो हो गया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
जय।
शर्ट हो जाता है।